निर्गमन अध्याय एक। निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन आरंभ करने के लिए मेरे साथ निर्गमन अध्याय एक निकाले। जहां तक इब्रानी भाषा का संबंध है, अब को और पढ़ा जा सकता था, क्योंकि निर्गमन की पुस्तक उत्पत्ति की पुस्तक का ही अलग भाग है। उत्पत्ति का अंतिम पद है, इस प्रकार यूसुफ 110 वर्ष का होकर मर गया और उसके शव में सुगंध द्रव्य भरे गए और वो शव मिस्र में एक संदूक में रखा गया। अब इसे आगे निर्गमन अध्याय एक में लिखा है। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घरानों को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए ये हैं, अर्थात रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून, बिन्यामीन, दान, नप्ताली, गाद और आशेर। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे। निर्गमन एक, एक से छह पर। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि निर्गमन का पहला अध्याय वास्तव में उत्पत्ति की पुस्तक से जुड़ा हुआ है। उत्पत्ति के समान इस पुस्तक का लेखक भी मूसा है। ये अत्यंत दिलचस्प बात है कि मूसा द्वारा लिखी गई पांच पुस्तकें, जिन्हें पंच ग्रंथ भी कहते हैं, संपूर्ण बाइबल का सातवां भाग है। ये सब पुस्तकें एक साथ मिलकर नया नियम के दो तिहाई के बराबर है। यदि परमेश्वर इतिहास के एक विशेष युग और अध्ययन के लिए बाइबल का संपूर्ण सातवां भाग दे रहा है, तो स्पष्ट है कि ये भाग बाइबल का आधार वरन नींव है, और परमेश्वर निश्चय ही चाहता है कि हम इसे जाने और समझे। यहाँ हमारे पास याकूब के पुत्रों के नाम है जो याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे। वे सब अपने अपने परिवारों के साथ आए थे, कुल मिलाकर 70 प्राणी, क्योंकि यूसुफ अपने दो पुत्रों के साथ पहले से ही मिस्र देश में था। और इसराइल की संतान फूलने फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि कुल देश उनसे भर गया। निर्गमन एक, सातवीं पद। इस पद से वास्तव में यथास्थिति का बोध नहीं हो रहा है। इसराइल के संतान फूलने फलने लगे, संख्या में बढ़ते चले गए, अत्यंत सामर्थी बनते गए कि सारा देश उनसे भर गया। दूसरे शब्दों में लेखक का इस पद से अभिप्राय यह है कि उस समय याकूब की संतानों में अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। सत्य तो ये है कि वे 70 यूसुफ के समय वहां आए थे। उसकी मृत्यु के 300 वर्ष पश्चात निर्गमन के समय 600,000 व्यसक पुरुष थे। ये सब 21 वर्ष से अधिक आयु के थे। इसलिए जब यहाँ लिखा गया है इतने अधिक बढ़ गए, तब वास्तव में स्थिति ये थी कि प्रत्येक 25 वर्ष में उनकी जनसंख्या दुगुना हो जाती थी। ठीक यही तो आज संसार की जनसंख्या में हो रहा है। अब संसार की जनसंख्या प्रत्येक 25 वर्ष में दो गुना हो जाती है। इसलिए ये कहना सही है कि उनमें जनसंख्या विस्फोट की स्थिति थी, जैसा कि अब हम अनुभव कर रहे हैं। प्रत्येक 25 वर्ष में दुगनी जनसंख्या। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो इसराइली हमसे गिनती और सामर्थ्य में अधिक बढ़ गए हैं, इसलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा न हो कि जब वे बहुत बढ़ जाए और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़े और इस देश से निकल जाए। निर्गमन एक, आठ से दस। फिरौन वास्तव में उनके देश छोड़कर चले जाने से भयभीत था। उसने सोचा कि कहीं युद्ध छिड़ जाए तो वे उसका लाभ उठा लेंगे, शत्रुओं से मिलकर हमसे लड़ेंगे और तब देश छोड़कर चले जाएंगे। इसलिए इसे निष्फल करने के लिए। इसलिए उन्होंने उन पर बेगारी करने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल डालकर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर जो जो वे उनको दुख देते गए, त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इसराइलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इसराइलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। निर्गमन 1:11-14 पद। अब मिस्री वास्तव में यहूदियों को दुख देने लगे, उनका दमन करने लगे। वे उन पर भारी बोझ डाल डालकर उन्हें दुख देते, उनके साथ कठोरता का व्यवहार करते और उन पर गुलामी का जुआ रखकर उन्हें प्रताड़ित करने लगे। जो कुछ भी अब यहूदी करते वे सब उन्हें कठोर श्रम के साथ करना पड़ता था। ये दिलचस्प है कि इन दशाओं में भी इसराइल की संतानें निरंतर बढ़ती और फूलती फलती रही। संभवतः सबसे दुर्बल बातों में से एक बात जो किसी देश के लिए हो सकती है वो है उसकी समृद्धि। विपरीत दशाओं के अंदर देश मजबूत बनते प्रतीत होते हैं। ठीक यही बात कलीसिया के लिए भी सच होती है। कलीसिया के आरंभिक इतिहास में कलीसिया रोमी सरकार द्वारा बहुत अधिक सताव सह रही थी, परंतु वो लगातार बढ़ती ही जा रही थी। आरंभिक कलीसिया में विस्मयकारी जनसंख्या वृद्धि हुई थी, परंतु जब कलीसिया समृद्ध होने लगी और एक धर्म के रूप में पहचानी जाने लगी, वरन एक राजकीय धर्म बन गई, तब उन समस्त क्षेत्रों में कलीसियाएं दुर्बल हो गई थी। समृद्धि के कारण मनुष्य में कोमलता आ जाती है, परंतु कष्टों के कारण मनुष्य कठोर बन जाता है। फिरौन उनसे कठोर परिश्रम करवाकर और उन पर असहनीय बोझ डालकर वो उन्हें दुर्बल बनाने की इच्छा रखता था, परंतु वो अपने उद्देश्यों में सफल न हो सका, वो उन्हें दुर्बल न बना सका। इसके विपरीत वो अधिकाधिक बलशाली होते गए। शिप्रा और पुआ नामक दो इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी कि जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय जनमाने के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए मिस्र के राजा के आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवाकर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? धाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया कि इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुंचने से पहले ही उनका बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। और धाइयां इसलिए कि वे परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। तब फिरौन ने अपनी सारी प्रजा के लोगों को आज्ञा दी, इब्रियों के जितने बेटे उत्पन्न हो उन सबों को तुम नील नदी में डाल देना और सब बेटियों को जीवित रख छोड़ना। निर्गमन 1:15-22 पर। इस प्रकार सबसे पहले तो फिरौन ने इब्रियों यहूदियों के शिशु बालकों को मार डालने की युक्ति निकाली। उसने धाइयों को आदेश दिया कि बालक उत्पन्न होते ही वे उसे मार डाले, पर जब ये युक्ति असफल हो गई तब उसने एक सामान्य आदेश निकाला कि लोग शिशु बालक को ले जाकर नील नदी में फेंक दे और शिशु लड़कियों को बचाए रखें कि वे सेविकाएं और दासी बन सके। यहां धाइयों द्वारा प्रत्यक्ष झूठ बोलने के साथ एक समस्या है। जब फिरौन ने उन्हें बुलाकर पूछा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन क्यों नहीं किया, तब भाइयों ने निर्भय होकर उत्तर दिया, महाराज ये इब्री स्त्रियां बड़ी फुर्तीली होती है,
हमारे पहुंचने से पहले बच्चे को जन्म दे चुकी होती है, वे मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है जो ऐशो आराम का जीवन व्यतीत करती है। निस्संदेह धाइयों का कहना सच भी हो सकता था। ऐसा देखा गया है कि जब स्त्री को कठोर परिश्रम करने पर मजबूर किया जाता है तब उनका शरीर गठीला और मजबूत बन जाता है और वे शिशु को जन्म देकर पुनः अपने पर लौट जाती है। न्यू गिनिया जहां स्त्रियां खेती और परिश्रम का कार्य करती है, वहां वे बच्चे को जन्म देकर उसे अपने पीठ पर बांधकर फिर से खेतों में काम करने लगती है। आप में से कुछ स्त्रियां मेरी इस बात पर अचंभा करेंगी, परंतु ये सच है, आप लोग शरीर से कोमल हैं, स्त्रियों की तरह कठोर नहीं, इसलिए संभावना अधिक है कि धाइयों ने झूठ नहीं बोला था, परंतु कुछ लोग इसे झूठ बोलने के नजरिए से देखते हैं। ये था या नहीं मुझे नहीं मालूम, पर सोचने वाली बात तो ये है कि यदि वे झूठ बोल रही थी तब फिर परमेश्वर ने उनको आशीष क्यों दी थी। मेरे पास कोई उत्तर नहीं है, मैं तो बस यही बात जानता हूं कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, उनके घर बसाए, क्योंकि वे परमेश्वर का भय मानती थी। मैं झूठ और सच के चक्कर में पढ़ना नहीं चाहता।